stop habis anu ya, bukan stop habis kan. Bisa lah. Stop kalau orang mas.
Rama Rama Re Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Raya Sabadresu
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 9 अध्याय 20 श्लोक संख्या 37। तम त्यक्तु कामान् ममताम् वर्तुः त्याग विशङ्कितम् नाम निर्वाचनम् नामकर्ण तस्य श्लोकम् एनम् सुरा जगुः। तं त्यक्त्वा कामान् ममताम् तं त्यक्तु कामान् ममता मातुस्त्याग विशङ्कितान् मातुस्त्याग विशङ्किताम् नाम निर्वाचनं तस्य नाम निर्वाचनं तस्य लोकमेनं सुराजगुः श्लोकमेनं सुराजगुः। त्वं त्यक्तु कामान् ममताम् शङ्किताम् नाम निर्वाचनं तस्य मन्येनं सुराजगुः तं त्यक्त्वा कामान् ममताम् मातुस्त्यागविशङ्किताम् नाम निर्वाचनं तस्य लोकमेनं सुराजगुः तं त्यक्तु कामान् ममताम् मातुस्त्यागविशङ्किताम् नाम निर्वाचनं तस्य एनं सुराजगुः। तं त्यक्तु कामान् ममताम् मातुस्त्यागविशङ्किताम् नाम निर्वाचनं तस्य लोकमेनं सुराजगुः तं त्यक्तु कामान् ममताम् लोकमेनं सुराजगुः। श्रीराधा गिरधारी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। तम नव शिशु को त्यक्तु कामान त्यागने की इच्छा से ममताम ममता को वर्तुहु त्याग विशंकिताम अवैध पुत्र उत्पन्न करने के कारण अपने पति द्वारा छोड़े जाने से अत्यंत भयभीत नाम निर्वाचनम नामकरण संस्कार तस्य उस बालक का श्लोकम श्लोक एनम इस सुरा देवतागण ने जगुहु घोषित किया। अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ममता अत्यंत भयभीत थी कि अवैध पुत्र उत्पन्न करने के कारण उसका पति उसे छोड़ सकता है, अतएव उसने बालक को त्याग देने का विचार किया। लेकिन तब देवताओं ने उस बालक का नामकरण करने के सारी समस्या हल कर दी। तात्पर्य, वैदिक शास्त्र के अनुसार जब भी बालक उत्पन्न होता है तो जातक कर्म तथा नामकरण संस्कार किए जाते हैं, जिनमें विद्वान ब्राह्मण ज्योतिष गणना के अनुसार कुंडली बनाते हैं। किंतु ममता ने जिस पुत्र को जन्म दिया था वह बृहस्पति द्वारा उत्पन्न अवैध पुत्र था, क्योंकि ममता तो उत्तत्यति की पत्नी थी, किंतु बृहस्पति ने बलपूर्वक उसे गर्भवती बना दिया था। अतएव बृहस्पति को भर्ता बनना पड़ा। संस्कृति के अनुसार पत्नी पति की संपत्ति होती है और अवैध मैथुन द्वारा उत्पन्न पुत्र द्वाज कहलाता है। हिंदू समाज में ऐसा पुत्र को दोगला कहा जाता है। ऐसी स्थिति में बालक को उचित संस्कार द्वारा नाम दे पाना कठिन होता है। इसलिए ममता चिंतित थी, किंतु देवताओं ने बालक को एक उपयुक्त नाम भरद्वाज प्रदान किया, जिसका अर्थ था कि यह बालक अवैध रूप से उत्पन्न है और इसका पालन ममता तथा बृहस्पति दोनों को करना चाहिए। चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपस्तदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणलिताश्विशान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च दुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो प्रसंग इस प्रकार है, भरत महाराज के तीन पत्नियां थी, वो तीन पत्नियों को तीन पुत्र उत्पन्न हुए। जब तीन पुत्र उत्पन्न हुए, भरत महाराज ने कहा, अरे ये पुत्र तो मेरे जैसे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तुरंत उनकी पत्नियों को डर लगा, उनके तीनों पुत्रों को उन्होंने मार दिया। तब बहुत भरत महाराज बहुत दुखी हो गए। बहुत प्रयास करने के बाद उनको कोई पुत्र नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने यज्ञ किया मरुद्गणों का। जब मरुद्गण प्रकट हुए यज्ञ में, और भरत महाराज को भरद्वाज नामक पुत्र को उन्होंने प्रदान किया, तब प्रश्न आया कि ये भरद्वाज पुत्र कहाँ से आया, ये भरद्वाज का इतिहास क्या है। तो ये भरद्वाज का इतिहास का वर्णन करते हुए ये प्रसंग चल रहा है, ये श्लोक चल रहे हैं। भरद्वाज कोई और नहीं है, बृहस्पति और ममता के पुत्र हैं। बृहस्पति के जो भाई हैं, उनकी पत्नी है ममता। बृहस्पति, कल के श्लोक में हमने ये देखा कि किस प्रकार कि बृहस्पति आकर्षित हो गए ममता की सुंदरता के प्रति, और जैसे आकर्षित हो गए, बृहस्पति ने क्या किया, ममता को गर्भ प्रदान किया। लेकिन ममता पहले से गर्भवती थी, गर्भवती होने के नाते गर्भ में जो बच्चा था, तो उसने मना किया, नहीं गर्भ मत दो, क्योंकि मेरे लिए या इस गर्भ में और एक शिशु के लिए कोई जगह नहीं है। वैसे ही गर्भ के अंदर जो शिशु होता है बहुत संकुचित होकर रहता है, बहुत तकलीफ में रहता है, और एक शिशु अगर अंदर आ रहा है तो स्वाभाविक तरीके से जो अंदर बच्चा था उसने वो लात मार के बोल रहा था, नहीं नहीं मुझे गर्भ प्रदान मत करो, कि और एक बच्चे के लिए स्थान नहीं है। तब बृहस्पति क्रोध में उन्होंने क्या किया, वो शाप दिया कि तुम अंधे हो जाओ, यू बिकम ब्लाइंड। तब वो अंदर का जो बच्चा था वो अंधा हो गया, लेकिन वो जैसे बच्चा तो बहुत तकलीफ तो हो ही रहा था, उस लात मार रहा था, पैर से लात जैसे मार रहा था, तो बृहस्पति का जो वीर है वो नीचे गिर पड़ा। जैसे नीचे गिर पड़ा, और एक बच्चा का रूप धारण किया, इतना शक्तिशाली होता है बृहस्पति, साधारण व्यक्ति नहीं है, वो देवताओं के गुरु हैं। होने के नाते उनका वो दिव्य, क्योंकि देवताओं के लोक में इस प्रकार का जो विधान है वो स्वाभाविक है, ये नरलोक में जो होता है विधि विधान उससे थोड़ा सा अलग सा होता है। तो जैसे वीर नीचे गिर पड़ा बृहस्पति का, तो एक बच्चा का रूप धारण किया, और जैसे बच्चा का रूप धारण किया, तो आज के श्लोक में उसका वर्णन है। तम तिक्तु कामान ममतान, तम का अर्थ है वो बच्चा जो अभी अभी जन्म लिया है। तिक्तु कामान, वो कौन बच्चा था जो ममता के गर्भ में जो पहले से था वो बच्चा, तम तिक्तु, उसके द्वारा उन्होंने त्याग कर दिया, या उस दूसरे बच्चे को, या बृहस्पति की वीरी को जैसे उन्होंने लात मार के नीचे गिरा दिया, तो क्या हुआ, भर्तृत्याग विचेक्षितम, तो ममता को बहुत भयभीत हो गई। क्या भय था उनको, भय है ताकि कहीं मेरा पति को पता लग जाए बात कि मुझे कोई एक पुत्र हुआ है, लेकिन वो पुत्र किसी और का है, बृहस्पति का है। जैसे मेरे पति को मार जाए बात तो मुझे त्याग कर देंगे वो, क्योंकि हर स्त्री का ये बड़ा भय रहता है कहीं मेरी पति जो है मुझे त्याग ना दे। ये भय हर पत्नी में स्वाभाविक तरीके से रहता है, इसकी वजह से समाज में शिष्टाचार बनी रहती है। वैसे जो भय है समाज में क्या होगा मेरा, कहीं मेरी पत्नी पति नाराज ना हो जाए या मेरे पति दुखी ना हो जाए, कहीं मेरे पति मुझे त्याग ना दे, इस प्रकार का जो डर है हर एक स्त्री को शिष्टाचार में रखती है। ये डर बहुत जरूरी है। जैसे लोग कहते हैं निर्भय रहो, जो चाहे वो करो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, समाज से क्या डरना, परिवार से क्या डरना। वैसे भगवताएं भगवान कहते हैं डरो मत, लेकिन वो डर में अंतर है। भगवान कहते हैं डरो मत क्यों, क्योंकि आप मेरे आश्रय ले चुके थे इसलिए डरो मत। लेकिन मानव सभ्यता को बना के रखने के लिए, शिष्टाचार को बना के रखने के लिए, संस्कृति को बना के रखने के लिए ये डर जो है आवश्यक है। एक है भय, दूसरा है लज्जा, ये सब स्त्री का आभूषण होता है। तो उनको डर लगा कि क्या किसका भर्तु त्याग विशंकिता, भर्तु कहीं मेरे पति मुझे त्याग ना दे, पति को भर्तु कहा जाता है, कहीं मुझे त्याग ना दे। भर्तु त्याग विशंकितम नाम निर्वाचनम तस्य श्लोकम एनम सुराज। अभी क्या करें, जैसे बच्चा का जन्म होता है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं दो प्रकार के संस्कार अति महत्वपूर्ण होते हैं। एक संस्कार है जातक कर्म संस्कार और दूसरा संस्कार है नामकरण संस्कार। वैसे जन्म लेने से पहले ही बहुत सारे संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार होता है और अनेकों अनेकों संस्कार होता है, जीवंतो संस्कार होता है और बहुत सारे संस्कार होते हैं। तो जातक कर्म संस्कार एक संस्कार है। जैसे माँ और बच्चे के बीच में जो एम्बिलिकल कॉर्ड वो संबंध रहता है उसको जो काटते हैं कि संस्कार को जातक कर्म संस्कार कहा जाता है। ये जातक संस्कार कर्म संस्कार क्यों किया जाता है, क्योंकि वैसे जो जब बच्चा का जन्म होता है वो स्त्री के गर्भ से होता है, स्त्री के गर्भ से होने के नाते तो वो अभी भी उनके अंदर वो बुद्धि जो है पूर्ण तरीके से विकसित नहीं रहता है। तो बुद्धि का विकास होने के लिए जातक कर्म संस्कार किया जाता है। उसके लिए जैसे बच्चा जी का जन्म हुआ तो पिता का कर्तव्य होता है जातक कर्म संस्कार करना। पिता, उस बच्चे के पिता, वो जाके सबको कहता है रुको, उनको अभी कुछ पिलाओ मत, अभी उनका नाभि को काटो मत, रुको। ऐसा कह के पिता जाते हैं एक स्वच्छ नया पत्थर में चावल का आटा को, चावल को खुद अपने हाथ से घिसते हैं या उसको पाउडर बनाते हैं, दर्भ के द्वारा उसको शुद्ध करते हैं और शुद्ध जो गाय का जो घी है, देसी गाय का घी, उसको लेके आते हैं और अनेकों मंत्रों को उच्चारण करते हैं और एक यज्ञ करते हैं। करके वो स्वयं उनके पिता उस बच्चे के जो जिह्वा के ऊपर वो घी और वो चावल का जो टुकड़ा है, वो आटा है, वो लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं हे भगवान आप इस बच्चे की बुद्धि को तेज करो, तीव्र करो, ताकि इस जन्म में वो मुक्ति प्राप्त कर सके, ताकि वो जान सके सत्य क्या है असत्य क्या है। इस प्रकार की प्रार्थना के द्वारा तब वो पिता कहते हैं इसका जो नाभि के साथ संबंध है वो जो नाल होता है उसको काटो और बाद में उनको दूध पिलाया जाता है, बस माँ का स्तन का दूध तब पिलाया जाता है। तो आजकल संस्कार तो कोई जानता ही नहीं है, हॉस्पिटल में डाल देते हैं, हॉस्पिटल से बच्चा निकल जाता है, इसके वजह से कोई किसी का बुद्धि तेज नहीं रहता है। ये संस्कार अति महत्वपूर्ण होते हैं। संस्कार आप भवते द्विजः, संस्कार के बिना, संस्कार का अर्थ है प्यूरिफिकेशन, शुद्ध शुद्धिकरण। क्योंकि हमारा इस भौतिक जगत में जो जीव आता है वो जीव हमेशा आने को भौतिक चीजों की संबंध की वजह से अशुद्ध हो जाता है उनकी चेतना। तो ये अशुद्ध चेतना को शुद्ध करने के लिए संस्कार की आवश्यकता है। आजकल कोई संस्कार के ऊपर ध्यान नहीं देता है, इसलिए हर एक व्यक्ति का जो मानसिकता है शूद्र के स्तर में है। तभी जब बच्चा जन्म हुआ तो उनको संस्कार होना चाहिए। अभी सारे देवताओं को मालूम है कि हमारे गुरु का पुत्र है, ये वो साधारण व्यक्ति नहीं है। बृहस्पति का पुत्र मतलब साधारण थोड़ी ना है। बृहस्पति मतलब कौन है? देवताओं के गुरु है। तो देवताओं के गुरु होने के नाते उनका पुत्र कितना शक्तिशाली होगा देखिए। तो सारे देवताओं को मालूम है, इसलिए वो आए, उधर प्रकट हुए। प्रकट होके वो देवताओं ने ये संस्कार किया। क्यों? मां तो भयभीत हो गई थी, नहीं 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 ये इस बच्चे को त्याग कर देंगे, नहीं नहीं इसको हम छोड़ देंगे, इसे कोई संस्कार नहीं करेंगे। तब देवताओं ने सोचा नहीं नहीं इनका संस्कार होना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य में एक बड़ा व्यक्ति होगा, महान व्यक्ति होगा, क्योंकि हमारे गुरु का पुत्र है। तो देवता लोग आके उनका ये संस्कार किए। तो ये हुआ एक संस्कार, इसका नाम है जातक कर्म संस्कार। ओके, देवता लोगों ने किया। और दूसरा है नामकरण संस्कार। ये नामकरण संस्कार है 10वें दिन या 11वें दिन या 21वां दिन या कभी 101वां दिन या एक साल के बाद किया जाता है ये नामकरण संस्कार। ऐसा नहीं कि चाइनीज लोगों के जैसा नामकरण संस्कार उनका कैसे होता है, जैसे बच्चा का जन्म हुआ वो किचन में जाके कोई बर्तन को गिराते हैं, ये सत्य है, जो साउंड आया वो साउंड रख देते हैं। ये भी एक प्रकार का संस्कार है, जैसा जो आवाज आया वो रख दिया। तो भी पता नहीं देवता लोग करते होंगे, ऐसा साउंड निकालते होंगे, कोई चम्मच गिराता है, कोई बड़ा बर्तन गिराता है, जैसा हो उसका नाम वैसा रख दिया। उनका नाम भी बड़ा अजीब रहता है। लेकिन ये जो नामकरण संस्कार होता है इसके पीछे ज्योतिषियों का हाथ रहता है। उस बच्चे का जो जन्म होता है उसके समय का जो कुंडली बनाते हैं वो किस प्रकार के गुण होता है उस गुणों के अनुसार उनका नामकरण होता है। जैसे आप देखिए कि जितने भी कौरव थे उन सब का नाम दू 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 से शुरू होता है, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि। क्यों? क्योंकि वो सब दुष्ट थे। सब दुष्ट होने के नाते उनका नाम भी वैसे रख दिया, ये इस प्रकार का दुष्ट होगा, इस प्रकार का दुष्ट होगा। वो दुष्टों का भी वैरायटी होता है, तो सब प्रकार के वैरायटी दुष्ट थे सब। और उनकी माता पिता बड़े प्रेम से बुला देते, ये दुर्योधन। तो ऐसा नहीं कि जो मन में आया कौन सा नाम पसंद है वो रखेंगे, नहीं, जो पसंद है वो नहीं रखना है। ये वैदिक सभ्यता नहीं है। वैदिक सभ्यता है जो जिस प्रकार की जो राशि के अनुसार जो नाम आता है उसके अनुसार उसका नाम रखा जाता है। और नाम भी किस प्रकार होता है वो भी भगवान के नाम होता है, भगवान को स्मरण करने वाला या उनके गुणों के अनुसार कुछ नाम होता है। तो भी नामकरण संस्कार ही बड़ा लंबा सारा संस्कार है, इसमें भी पिता का बड़ा कर्तव्य होता है। अभी जातक कर्म संस्कार के बाद तुरंत नेक्स्ट संस्कार है नाम संस्कार, नामकरण संस्कार। जातक कर्म संस्कार के बाद माँ बच्चे को दूध पिलाती है, सब कुछ करती है, तब उस बच्चे को माँ के साथ पति बुलाते हैं और अनेकों अनेकों होम यज्ञ इत्यादि मंगलाचरण इत्यादि सब करते हैं। करने के बाद पति के जो राइट साइड में पत्नी बैठती हैं और बच्चे को गोद में लेती हैं और वो अपनी पति को प्रदान करती है। प्रदान करके उनके बाद में वो पति पति के लेफ्ट साइड में आके पत्नी बैठती है और धर्म इत्यादि को लेके पूर्व दिशा के ऊपर ध्यान लगाते हुए, वो सूर्य के ऊपर ध्यान लगाते हुए वो पत्नी बैठी रहती है और प्राण प्रार्थना करती है। सूर्य जिस प्रकार तेजस्वी हो, सूर्य जिस प्रकार प्रकाशवान है, उस प्रकार मेरा पुत्र का नाम भी उस प्रकार प्रकाशवान हो। अब देखिए वैदिक सभ्यता कितना सूक्ष्म है, ऐसा नहीं कि ठीक है हमको एक पसंद आया उसको रख दिया, बाद में नहीं नहीं ये पसंद नहीं है हम चेंज कर देंगे नाम ये सब मॉडर्न सिविलाइजेशन है, पाश्चात्य सभ्यता है, ये वैदिक सभ्यता नहीं है। जो वैदिक सभ्यता पालन करता है वो कम से कम वो कुत्ता बिल्ली नहीं बनता है, एटलीस्ट ही नॉट बिकम ए डॉग, वो एनिमल नहीं बनता है। पूरा वैदिक सभ्यता ये संसारों का पूर्व उद्देश्य यही है ताकि हमारी शुद्धिकरण हो। तब पिता वो अनेकों यज्ञ वगैरह करने के बाद प्रार्थना करते हुए उस बच्चे को अपने गोद में लेके तब उस बच्चे का नाम जो है पत्नी के कान में उच्चारण करता है पिता कि ये बच्चे का ये तुम्हारा ये जो बच्चा है उसका नाम ये है। तो उस समय पत्नी ध्यान करती है मेरी पति कौन है, भगवान की प्रतिनिधि है, भगवान की प्रतिनिधि होने के नाते मुझे भगवान ने स्वयं ये बच्चा जिसका नाम है वो उच्चारण करके वो अपनी गोद में स्वीकार करती है और कहती है कि जब तक उसका द्विज संस्कार नहीं होगा, यानी द्विज मतलब अगला जो संस्कार है वो ब्राह्मण का संस्कार होता है, यानी द्विजा मतलब जल संस्कार, तो ये जल संस्कार नहीं होता तब तक मैं उनको अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। यानी माँ का उस पुत्र का देखभाल करने का वो पीरियड उतना तक ही है, जैसे उसका द्विजा यानी जैसे उसका ये जन संस्कार हो गया, संस्कार होते ही माँ जो है वो बच्चे को बोलती है बस अभी मेरे बस का बात नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मण हो गया द्विज हो गया, द्विज होने के बाद उसको वेद अध्ययन करना है, वो स्वतंत्रता से जीना चाहिए। तो पिताजी जो पिता होता है उस बच्चे को नामकरण देके नामकरण संस्कार करके अगला संस्कार तुम इस बच्चे को देखभाल करना तुम्हारे वाले करता है, क्योंकि तब तक वो बच्चा जो है वो माँ के ऊपर पूर्ण निर्भर करता है, उसके बाद माँ को भूल जाना चाहिए उस बच्चे को, अभी मेरा मैं उसको देखभाल नहीं कर सकती, मैं खुद तो अनपढ़ हूँ, मैं खुद तो वेद कुछ आता नहीं है, मैं इसको क्या सिखाऊंगी। इस भावना से उस बच्चे को द्विज संस्कार होने के बाद पिता या पिता के या जिस के गुरु के हवाले करते उस गुरु का बच्चा हो जाता है। इसलिए माँ का कर्तव्य है बच्चे को पालन करने तक पांच साल तक या पांच या सात या जब भी उसका जो संस्कार होता है ये जो जन्म संस्कार होता है द्विज संस्कार होता है तब तक है, तब तक देखभाल करना है। तो ये नामकरण संस्कार है, नामकरण संस्कार के दिन ये सारे क्रिया होती है। तो पिताजी को ज्यादा उस बच्चे के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, वो आसक्ति कब होना चाहिए जब उसका द्विज संस्कार होता है, पिताजी को चिंता होना चाहिए मैं उसको कैसे आगे बढ़ाऊं उसको। तो माँ का चिंता जो है उस बच्चे का बच्चे के ऊपर केवल जब तक उसका ये जन्म संस्कार होता है तब तक की है, उसके बाद पिताजी का चिंता है। ये वैदिक सभ्यता जो है ये इतना सुंदर तरीके से व्यवस्था किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति उसको पालन करता है परिवार में या बच्चों को देखभाल करने में या पति पति के बीच में ये परिवार में इतने ज्यादा समस्याएं नहीं आती है, अगर आती भी है तो वो घातक नहीं होती है। ये वैदिक सभ्यता को पालन नहीं करने की वजह से हर क्षण इतना दुखमय होता है ये परिवार, और इस एक एक दुख एक एक समस्या जो है बड़े घातक समस्याएं होती है। तो इसलिए हमको ये वैदिक सभ्यता को पालन करना अत्यावश्यक है, खास करके हमारे आचार्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ग्रंथ का रचना किया है जिसका नाम है सत् क्रिया सार दीपिका। तो प्रत्येक गृहस्थ को ये सत् क्रिया सार दीपिका के अनुसार ये संस्कार निश्चित रूप में करना चाहिए। जो लोग ये सत् क्रिया सार दीपिका के अनुसार जो संस्कार है उस संस्कार को पालन नहीं करते, चाहे वो कितना भी कुछ भी भक्ति करने का प्रयास भी करे उनको बहुत तकलीफ होता है और कर नहीं पाएंगे, और धीरे धीरे से वो मनुष्य क्या भक्त क्या मनुष्य भी नहीं बन पाएंगे, जानवर के स्तर में चले जाएंगे। तो इसलिए ये संस्कार अति महत्वपूर्ण होता है, खास करके गृहस्थ जीवन में जब तक घर में शांति नहीं होती है तब तक वो भक्ति नहीं कर सकते। भगवद गीता में भगवान स्पष्ट रूप में कहा अशांतस्य कुतः सुखम्, शांति ही नहीं है तो सुख कहां से आएगा? भक्ति में सुख तभी आएगी जब कम से कम शांति तो हो। तो आजकल शांति नहीं है लोगों के जीवन में, तो भक्ति कहां से होगी? भक्ति का सुख कहां से प्राप्त होगा? तो भक्ति केवल एक प्रकार का ढोंग हो जाता है अगर घर में शांति नहीं है। लोग सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा भक्त हूं, लेकिन आपके घर में शांति नहीं है तो भक्ति का सुख कहां से अनुभव हो रहा है? अगर कोई विरक्त है, वैरागी है, तो उनको ये सब असर नहीं करता है, क्योंकि उनकी चेतना जो है वो भौतिक स्तर से उब चुका है। तो उनको जीवन में कितना भी दुख आए, तो अशांति आए, उसकी भक्ति में कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन जब गृह जीवन में अगर अशांति या दुख होता है, तो उसके वजह से उनकी भक्ति में निश्चित रूप में असर पड़ता है। इसलिए शांतता और स्वच्छता बना के रखने के लिए संस्कार अति आवश्यक है, संस्कार करना जरूरी होता है। प्रभुपाद जी भी अनेकों जगह इस संस्कार के विषय में चर्चा किए हैं। अभी देवताओं को भी इस संस्कार का महत्व मालूम था, तो इसलिए देवता लोग आए, हमारे गुरु का पुत्र है वैसे ही गिरा पड़ा है, उसको कोई संस्कार नहीं हुआ, चलो हम जाके करते हैं। पहले जाति संस्कार किए, बाद में नाम संस्कार किए। और ये नाम संस्कार कैसे किए? आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, श्लोकम एनम सुरा जगुहु। श्लोकम एनम सुरा जगुहु, श्लोकम एनम यानी आगे आने वाला जो श्लोक है, उस श्लोक के अनुसार उस बच्चे का नाम संस्कार कर दिया। तो क्या था आगे आने वाला श्लोक? इसमें लिखा नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है आगे वाला श्लोक है, मतलब 28वां श्लोक है। मूढ़े भारा द्वाजाम इमम। तो जैसे बृहस्पति ने देखा उस पत्नी ने क्या किया, वो छोड़ के जाने वाली थी उस बच्चे को, यानी ममता इस बच्चे को छोड़ के जाने वाली थी, तब बृहस्पति ने कहा, मूढ़े हे मूर्ख ममता, भारा द्वाजम इमम, ये तुम्हारी तुम्हारा पुत्र है, इससे क्या करो, इसको भरण करो। और द्वाजाम, द्वाजाम, ये द्वाजाम मेरा और तुम्हारा, द्वा का अर्थ दो, ये दोनों से उत्पन्न हुआ पुत्र है। जम मतलब जन्म लेना, द्वा का अर्थ है दोनों से जन्म लिया हुआ पुत्र है ये होने के नाते इमम भारा, भारा मतलब इसका भार जो है, इसका जो जिम्मेदारी है उसको आप निभाओ। भारद्वाजम बृहस्पते, भारद्वाजम बृहस्पते, भले ही भारा, हे भारा, हे श्री, हे ममता, द्वाजम यानी आपका पहले से एक पति है और मैंने आपके गर्भ में गर्भधान प्रदान किया है, तो भले ही आपके दो पुरुषों से ये बच्चा जन्म हुआ है, फिर भी तुम्हारा कर्तव्य बनता है इसको देखभाल करना। या तो यद उक्त्वा पितरो भारद्वाज स्वयं। तो जैसे इस प्रकार बृहस्पति ने कहा, वापस ममता ने कहा बृहस्पति को, ये तुम्हारा पुत्र है, ओ बृहस्पति, यू मेंटेन हिम, तुम इसको भरण करो। या तो यद उक्त्वा, यद उक्त्वा, जैसे उन्होंने ये कहा, उन्होंने वापस उच्चारण किया, पितरो भारद्वाज ततस्तु अयम, तुम इसको देखभाल करो। ऐसा करके बृहस्पति और ममता ये दोनों चले गए। दस द चाइल्ड वॉज नोन एज भारद्वाज, क्योंकि दोनों ने उच्चारण किया। कौन उच्चारण किया? बृहस्पति ने और ममता, वो दोनों ने उस बच्चे को देखा, ने कहा कि हम दोनों के बीच में ये बच्चा उत्पन्न हुआ है, इससे तुम भारा, तुम देखभाल करो। भारा का अर्थ देखभाल करना, और द्वा का अर्थ दोनों, जा का अर्थ जन्म लेना, हम दोनों से ये जन्म लिया है इससे तुम देखभाल करो। कभी कभी क्या, आजकल प्रत्येक घर में ऐसे होता है, जब बच्चा रोता है या कोई शरारत करता है, पत्नी बोलती है, देखो तुम देखभाल करो, तुम्हारा बच्चा है, तो पति बोलता है, हे तुम्हारा बच्चा तुम देखभाल करो, बेचारा बच्चा रो रहा है, एक कलयुग और क्या करते हैं। पति बोलता है मुझे काम पे जाना है, इस बच्चे को तुम देखभाल करो। पत्नी बोलती है मैं मुझे भी काम पे जाना है, बच्चे को देखभाल करो। उस बच्चे को क्या कर देंगे, क्रश में डाल देंगे। क्रश होता है ये तो प्ले ग्रुप तो अब बाग की बात है, लेकिन क्रश ऐसा चीज है जहां 3 महीने 4 महीने के बच्चे को हवाला कर देते हैं कोई किसी के हाथ। मैं क्या गया था ऐसे एक प्रोग्राम करने के लिए, जगह ढूंढ रहा था, तो किसी ने कहा कि आप हमारे यहाँ प्रोग्राम कीजिए, हमारा तो शाम को तो खाली रहता है, एयर कंडीशन रूम है, उधर आप लोगों को बुला के प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं दिन के समय गया था देखने के लिए बराबर है कि नहीं जगह। मैं जाके देखा कि वो लाइन में कुछ सफेद कपड़े में बांध के ऐसे ऐसे बच्चों को सुलाए। मैंने पूछा क्या है, कोई 3 महीने का बच्चा है, कोई 5 महीने का बच्चा है, सब एकदम एयर कंडीशन में सोए हुए, सब आराम से सोए हुए। तो उन्होंने कहा ये क्रश है हमारा, क्योंकि आजकल माताओं को पिताओं को समय नहीं है बच्चों को देखभाल करने की, हमको हवाले कर देते हैं। वो सुबह 7:30-8 बजे वो बच्चे को दे देते हैं, शिशु को, बच्चा भी नहीं शिशु है, उसको दे देते हैं, और शाम को 6:30-7 बजे तक वो आके ले लेते हैं। अरे बच्चे को दूध कौन पिलाता है, ये है ना बहुत सारे बॉटल है ना वो। अभी इस प्रकार अगर बच्चे को देखभाल किया जाए, उसको माता पिता के प्रति प्रेम कैसे रहेगा बताइए। हाँ। वो बोलेंगे मेरा बच्चा है, लेकिन ये बच्चा क्या करेगा बड़ा होके, अगर उसको मातृत्व क्या है वो नहीं मालूम है, तो उसके मन में जब भी कोई कोई स्त्री को देखता है वो स्त्री के रूप में देखता है, माँ के रूप में नहीं देखता है। ये निश्चित रूप में जान लीजिए, जो बच्चा कम से कम 2-2.5 साल तक माँ का दूध नहीं पिया है, तब तक वो जो बच्चा 2-2.5 साल तक कम से कम माँ का दूध पीता है, वो जब भी कोई भी स्त्री को देखता है तो उसको माँ का ही याद आता है। जो बच्चा माँ का दूध नहीं पीता है वो कोई भी स्त्री को देखता है वो स्त्री के रूप में देखता है, माँ के रूप में नहीं देखता है। तो वैदिक सभ्यता के अनुसार इस प्रकार माँ और बच्चे के बीच में जो प्रेम का संबंध होता है वो आजकल दिखाई नहीं पड़ता, इससे पूरा जानवर की समाज हो गया है, ऑल जस्ट एनिमलिस्टिक सोसाइटी। फिर भी बृहस्पति भी चले गए, ममता भी चले गए, बच्चे को छोड़ दिए। तब देवता गण आए तो ने कहा कि ये दैव योजना से हुआ है, ये दैव योजना से हुआ है, इसलिए उसका नाम क्या रखेंगे। वही सरस्वती ने उसका नामकरण कर दिया भारद्वाजा, इससे उनका नाम क्या पड़ गया बच्चे का, भारद्वाज। बाद में भरद्वाज ऋषि महान ऋषि बनते हैं। तो ये इसका ये है अस्तित्व में। ये श्लोक कनेक्शन कल का श्लोक के साथ में भी है, लेकिन कल का श्लोक मतलब 28वां श्लोक का तात्पर्य नहीं है। तो इससे रत्नों का श्लोक में आपको पूरा उसका सार, या कल का श्लोक में पूरा सार मिल जाएगा उसको। लेकिन सार रूप में ये है कि ये दैव योजना से बृहस्पति के द्वारा ये जन्म लिया बच्चा मर्द गुण को प्राप्त हुआ, उन मर्द गुणों ने दैव योजना से उसका नामकरण हो गया भारद्वाज, क्योंकि माता पिता ने उच्चारण कर दिया तुम देखभाल करो, तुम देखभाल करो, हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, भारा भारा द्वाजा, इसलिए उनका नाम भरद्वाज पड़ा। और मर्द गणों ने उसी बच्चे को क्या किया, भरत महाराज को प्रदान किया। तो भरत महाराज को प्रदान जैसे किया, भरत महाराज पृथ्वी के लोग थे। तो प्रभुपाद आगे तात्पर्य लिखते हैं, जब देवताओं की लोक में किसी का जन्म होता है लेकिन कोई उनका देखभाल करने के लिए नहीं होता है कोई, तो वो पृथ्वी लोक में आ जाता है, ऐसा प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं। हरे कृष्ण। वैसे ये जो श्लोक 9वां स्कंध पूरा अजीब सा स्कंद है लेकिन उसमें ये है कि वैराग्य सार है, क्योंकि 10वां स्कंद अभी आने वाला है, तो इसलिए बहुत सारे ऐसे ऐसे श्लोक आते हैं उसके अंदर जिसके ऊपर थोड़ा बोलना और समझना बहुत कठिन होता है, वेरी डिफिकल्ट। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है?
हाँ।
इनका प्रश्न ये है कि ये देवलोक में प्रकार का जो कार्य हुआ है या क्रिया हुआ है, क्या उचित है कि अनुचित है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मनुष्य के दृष्टिकोण से अनुचित है। इधर देखा जाए देवताओं के हिसाब से भी अनुचित है, लेकिन फिर भी उसके पीछे एक दैवी योजना है, ये समझना चाहिए। जैसे इस जगत में भी हम कभी कभी देखते हैं परीक्षित महाराज का इस ऋषि के गले में मरा हुआ सांप को डालना, कि अगर कोई प्रश्न पूछे उचित है कि अनुचित है, अगर कोई बोले अनुचित है तो अपराध करता है किसके प्रति, परीक्षित महाराज के प्रति, क्योंकि परीक्षित महाराज ने जो किया है वो उचित है कि अनुचित है इसका निर्णय जो परीक्षित महाराज के ऊपर वही ले सकता है, वो मैं नहीं ले सकता हूं। जैसे कोई क्वेश्चन पेपर लिखा, कोई आंसर लिखा, उसका करेक्शन कौन कर सकता है, जो उससे बड़ा वही कर सकता है ना। अगर वो 10th स्टैंडर्ड फेल है, वो अगर डिग्री कॉलेज का परीक्षा पेपर को करेक्ट करने बैठ जाए तो जा मैं 10th फेल हूं। जानते हैं मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने उससे गलत लिखा है, ठीक है वो गलत भी लिखा है, लेकिन हमारा कोई योग्यता नहीं उसको बोलने गलत है, क्योंकि मैं 10th फेल हूं खुद। आई माइसेल्फ एम 10th फेल, समझ रहे ना। तो बृहस्पति हम बहुत बड़े है, देवताओं के गुरु है, इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। तो उचित है अनुचित है वो महत्वपूर्ण नहीं है। प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य लिखेंगे तो उन्होंने इसके ऊपर कमेंट नहीं किया, उन्होंने कहा कि जब देवताओं के लोक में ऐसा होता है तो इधर क्या कहना, उन्होंने इतना ही कमेंट किया। तो ये नहीं कहा कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें कुछ कमेंट्री में देखिए, कोई भी कमेंट्री में ऐसा नहीं है, पूरा कमेंट्री को छान मारा है, सारे आचार्य कमेंट्री को छान मारा है, लेकिन कहीं भी बृहस्पति गलत है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो किया वो कुछ नहीं वर्णन, खाली इतना वर्णन है ये भरद्वाज पुत्र कहां से आया है। और देवताओं खुद आ गए, ये हमारे गुरु का ऐसा नहीं था उनके गर्भ में बहुत लंबा समय तक था वो बच्चा, नहीं, जैसे उन्होंने गर्भ प्रदान किया तुरंत वो गर्भ जो है बाहर आ गया, क्योंकि वो बच्चा जो गर्भ के अंदर था उसने नाप मारा, तो जैसे बाहर आते ही बच्चा गर्भ प्रकट हुआ। तो ऐसा कभी होता है क्या, कोई कोई दैव योजना है तभी तो होगा, ये समझना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि उचित और अनुचित ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें हैं, खास करके मनुष्य लोक में, भूलोक में और स्वर्ग में कुछ चीजें उचित उधर है, वही उचित चीजें इधर अनुचित होता है। जैसे अर्जुन, अर्जुन के पास इंद्र की पत्नी कौन है, सखी आई थी कि आपके साथ मैं संग करना चाहती हूँ, उर्वशी आई थी, हाँ उर्वशी आई थी, तो अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं मैं आप तो मेरे माता के समान हूँ। तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग में ये सब चीजें नहीं होता है। तब उन्होंने शाप दिया अर्जुन को, तो अर्जुन ने उस शाप को प्रतिरोध कर सकते थे लेकिन फिर भी स्वीकार किया। क्या शाप दिया, तुम हिंजरा बन जाओगे, तो इससे उनको ग्रहणला के रूप में एक साल तक रहना पड़ा। ठीक है, ये एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये हम नहीं समझ सकते। इतना हद तक कि मनुष्य लोक में भी कैसे क्या ये सब चीजें जो ट्रांजैक्शन होता है, कैसे रहा क्या होना चाहिए धर्म शास्त्र के अनुसार, मनोनीति के अनुसार, वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो देवता लोगों के क्या कहना, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन सार बात यह है प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में संस्कार के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ मुझे नहीं मालूम, मैं स्वर्ग स्वर्ग नहीं गया मैं। ओ आई कैनॉट कमेंट। उनका कहना यह है कि क्या इधर जो गृहस्थास्त्र में इस प्रकार होता है कि पति पत्नी और बच्चे ऐसा होता है, कि उधर भी ऊपर के लोकों में भी ऐसा होता है क्या, इतना हद तक कह सकता हूं देवता जो है वो एक ही कैटेगरी के नहीं होते हैं, वो भी अनेकों अनेकों कैटेगरीज के हैं। जैसे कुछ देवलोक है जो पृथ्वी के स्तर में ही है, कुछ देवलोक है जो स्वर्ग में है। तो कुछ ऐसा जगह वर्णन हुआ है कि देवताओं को बच्चे नहीं होते, वो एक कैटेगरी है, लेकिन कुछ अन्य कैटेगरी उधर होते हैं। और देवता लोक में भी कुछ सिटीजन्स होते हैं, कुछ विजिटर्स होते हैं। सिटीजन मतलब उधर निवासी है, और कुछ उधर के कंट्रोलर्स होते हैं। वेदों में बहुत अलग अलग जगह वर्णन हुआ है, कैटेगरीज और डेमिगॉड्स आर डिफरेंट डिफरेंट। जब लोग बोलते हैं 33 कोटि, असल में वो एक तरीके से बोला जाए तो 33 करोड़, वो 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि का और एक अर्थ है कि कैटेगरी। एक कोटि का बोलते हैं ना, एक कोटि का अर्थ क्या है, एक कैटेगरी का है, एक विभाग का है। तो ये 33 कोटि मतलब 33 कैटेगरीज है, ऐसा नहीं 33 करोड़। ठीक है, हम बोले तो 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन वो कोटि शब्द जो का और एक अर्थ ये है, वास्तविक अर्थ ये है 33 कैटेगरीज है। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की शिल प्रभुपाद की जय।